ये प्रातः क्लास चल रहा था। बंबई में सोमवार को 21/10/1963 दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि तुम बच्चे समझते हो और दूसरों को समझा सकते हो, बिगर समझे तो तुम लिख नहीं सकेंगे। हम गीता के लिए भी कह देते हैं कि गीता को हम झूठी क्यों कहते हैं, वो भगवान कौन है जिसकी सीमत गई हुई है। वो तो कह देते हैं श्री कृष्ण, बाप कहते हैं दैट इज रैंग, ये झूठ ही हो गई। श्री श्री तो हम कृष्ण को कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कृष्ण देवता है, देवताएं कलाओं में बंधे हुए होते हैं, उनके लिए गाया जाता है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, जबकि भगवान का ये टाइटल नहीं है। उनके लिए तो गाया जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। श्री कृष्ण को तो उन्होंने द्वापर में दिखाई दिए है। भगवान तो कल्प के अंत में आते हैं। और भगवान तो बाप है, श्री कृष्ण तो बच्चा है। तो श्रीमत भगवान कृष्ण वहां कहां से आएंगे? अभी तुम तो जानते हो ना कि तुमको अभी श्रीमत कौन देते हैं। श्री श्री भगवान शिव, वो कलातीत हैं, क्योंकि ज्ञान सूर्य है। सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता। क्योंकि कृष्ण को बाप ने समझाया, उनको श्री का टाइटल है। तो श्री श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, श्री श्री राधे भी नहीं कहेंगे। तो इनको कहेंगे श्री श्री। किसको? शिव को कहेंगे या रुद्र को कहेंगे? क्योंकि वो रुद्र बाबा बोलता है। देखो, मेरा नाम रुद्र भी है और मेरा नाम शिव भी है। शिव कल्याणकारी को कहा जाता है और रुद्र रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। ऐसे तो मेरे को बहुत ही नाम देते हैं, परंतु वास्तव में मुझे शिव माना एक बूरी भी कहते हैं। बिंदु नॉट, जब गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, پھر بوری رکھ دیتے ہیں. تو بوری معنی ہی دس ہو گئے, اس کو ناک کہا جاتا ہے. ابھی ہے جیسا ناٹ, اور ناٹ تو ہوتی ہے بندی. یہ ناٹ کو پھر اسٹار کے موافق سجایا جاتا ہے. اسٹار کو تو سجایا جاتا ہے نا, تو باپ نے سمجھائے دیا ہے کہ بچے ہم لوگ واسطو میں ہیں جیسے اسٹار. ایک بوری ہے, پھر لائٹ نکلتی ہے, جیسے اسٹار بن جاتے ہیں. ہم لوگ جب ہیروں کو اسٹار بناتے ہیں تو بھی ایسا بنا کر کے ان میں پوائنٹ دے دیتے ہیں, بس ہو گیا اسٹار. 21:10-63 کی وانی کا تیسرا پیج. تو یہ بھی لائٹ کی پوائنٹ نکال دیتے ہیں تو اسٹار ہو گیا. واستو میں آتما پرماتما مانا پرماتما دونوں ہیں. دونوں مانے دونوں مانے کون کون؟ واستو میں آتما و پرماتما مانا پرماتما دونوں ہیں ایک جیسے. آتما بھی بندو اور پرماتما بھی بندو. صرف وہ باپ ہے, وہ رہتے پرم دھام میں ہے, اور باپ سمجھاتے ہیں. سمجھائے گا بھی تو وہی نا, بچے تھوڑے ہی سمجھا سکیں گے. ان کو کہا جاتا ہے بابا, پتا, گاڈ فادر, تو ضرور بچے کہیں گے نا, اور اتنے تو سب مورخ ہیں. کہتے بھی ہیں وی آر آل بردرس, بردر ہوڈ. پھر جب ہم بردرس ہیں تو ضرور سب کا ایک باپ ہونا چاہیے. یوں تو ہر ایک بردر کا ایک بابا الگ ہے, پرنتو یہ جو سب آتمائیں ہیں بردرس, ان کا تو ایک باپ ہونا چاہیے نا. اس کو ہی کہا جاتا ہے پرم پتا. کس کو؟ جو انیک بندو بندو روپ اسٹارس ہیں, آتمائیں ہیں, ان کا ایک ہی باپ ہے پرم پتا. پھر کیا کہا جاتا ہے؟ پرم دھام میں رہنے والی آتما ارتھات پرم آتما. تو ابھی سمجھا تم لوگوں کو, کس کو سمجھانے کے لیے ڈیفیکلٹی ہوگی کیا؟ جب اتنا بڑا ان کو دیتے ہیں تو وہ بچے بولتے ہیں, تو ہم کس کے ساتھ کس کو یاد کریں؟ کیا ان کو یاد کریں؟ برہما کو یاد کریں؟ یہ تو یاد نہیں آتے ہیں, ہم نے کبھی یاد نہیں کیا. برہما کو, وشنو کو, شنکر کو, سوری کو, چندرما کو, تاروں کو, سب کو دیکھا ہے. تو ہمیشہ استھول کو یاد کیا, یعنی کرشن کو یاد کیا. تو یہ ہم کیسے یاد کریں؟ یہ تو کچھ بڑا ہے. باپ بولتے ہیں میں واسطو میں اتنا بڑا نہیں ہوں. پھر شیولنگ کو اتنا بڑا کیوں بنائے دیتے ہیں؟ ہے کوئی کارن ہوگا؟ کوئی کارن نہیں. ارے کان کو بڑا بنائے دیں، ناک کو بڑا بنائے دیں، شیولنگ کو اتنا بڑا کیوں بنائے دیتے ہیں؟ یہ شیولنگ ہم نے کیوں اٹھایا ہے؟ کیونکہ شیولنگ سو تو اتنا ہی دکھاتے ہیں، اور سالگرام بھی دکھاتے تو ہیں لیکن چھوٹا دکھاتے ہیں. کیا کارن ہے؟ سالگراموں کو چھوٹا دکھاتے ہیں اور لنگ کو بڑا دکھاتے ہیں تو دونوں اسٹار، تو چھوٹا بڑا کیوں دکھاتے ہیں؟ پارٹ کی بات ہے، ان کا بڑا پارٹ ہے. ہے تو پارٹ تمہارا بھی نا. دیکھو سوکھم بطن میں سالگرام دکھاتے ہیں، یہاں شیو کو بڑا دکھایا ہے، پرنتو واسطو میں تو ایسے ہے بھی نہیں، کیونکہ ہے ہی اسٹار پرماتما اور بو آتما، ان کو پرم کہا جاتا ہے، پرم دھام میں رہنے والی. اور یہ جو سبھی آتمائیں ہیں جو پنرجنم میں آتی ہیں، وہ تو پنرجنم میں نہیں آتا ہے. سمجھا نا؟ ارتھات پنرجنم ملتا ہی ہے یہاں وشو میں، پنرجنم کوئی سوکھم وطن میں نہیں ملتا ہے، مول وطن میں بھی نہیں ملتا ہے، ملتا ہی ہے سوکھم وطن میں، وہ استھول وطن میں ارتھات وشو میں. ابھی تم دیکھو اچھے بچے، میٹھے بچے، میرے لاڈلے بچے، یہ تمہارے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ کون بیٹھ کر کے سمجھاتے ہیں؟ ابھی تم ہی ان کو سمجھ سکتے ہو نا. برابر یہ جو پرم پتا پرم دھام میں رہنے والا پرم آتما ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے یہ پرکرتی کا لون لینا پڑے، یہ پرکرتی کا پتلا ہے نا، نہیں تو میں بھلا تم کو کیسے سمجھاؤں؟ تم کو ہم نر سے نارائن کیسے بناؤں؟ کرشن واسطو میں ہے ہی نارائن، پرنتو کرشن کو نارائن تو نہیں سمجھتے، پر واسطو میں ہے تو نارائن، یعنی سویمبر کے بعد ان کا نام نارائن رکھا جاتا ہے. تو باپ بیٹھ کر کے یہ سب باتیں سمجھاتے ہیں. کیا کس کا نام سویمبر کے بعد رکھا جاتا ہے؟ کرشن کا. پرنتو سویمبر ستیگ میں ہوتا ہے یا سنگم کی یادگار سویمبر دکھایا ہے بھکتی مارگ میں؟ تو سنگم یوگی کرشن کی بات ہے या सतयुग में बच्चे के रूप में जन्म लेने वाले कृष्ण की बात है? तो बाप बैठ करके ही ये सब बातें समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं कि हे मीठे बच्चे, तुमको इन बातों को सुनकर नशा चढ़ना चाहिए। और कोई ब्राह्मण तो इन बातों को समझा ही नहीं सके। जब चलते फिरते हो, घूमते हो, तो बाबा पूछते हैं विश्व का महाराजा बनने के लिए अभी हम माया पर जीत पहन रहे हैं, ये भारत नहीं, बॉम्बे नहीं, तुम विश्व का महाराजा जब बनते हो तो ये बॉम्बे नहीं होता है। कब की बात हुई? वो कौन सा टाइम होगा जब ये बॉम्बे नहीं होगा? लेकिन तुम विश्व के महाराजा बन जाएंगे। टाइम का पता चला है? ये बॉम्बे कब नहीं होगा है? अरे जब इस कल्प का अंत होगा, सभी असत धर्मों का विनाश हो जाएगा, एक सद्धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी, तब फिर ये बॉम्बे नहीं रहेगा। तो ये तो तुम सबको नशा रहता है, बरोबर नशा रहता है या कोई कोई को रहता है? क्योंकि जो जो कोई कोई शंकाओं में होंगे तो उनको ये नशा नहीं चढ़ता है। तुम्हारी महिमा है कि अगर अतीन्द्रिय सुखमय जीवन की अवस्था पूछनी हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। गोप और गोपियां और गोपी वल्लभ, ये कौन से युग की बात है? हैं? सतयुग की बात नहीं होती है, ये संगम युग की बात है। गोप और गोपी उनको कहा जाता है जो इन गुप्त बातों को समझते हैं। तुम्हारा ज्ञान गुप्त है ना? दुनिया वालों की या और धर्म में कन्वर्ट होने वालों की बुद्धि में नहीं बैठता, वहां सतयुग में तो होते ही है सहजादी सहजादी, मालिक होते हैं और राजाई होती है, तो जरूर यहां की बात होगी। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो लिखा हुआ है गोप गोपिकाओं से पूछो। ये फाइनल के समय की बात है। ये फाइनल कब होगा? फाइनल एग्जाम होता है ना, फाइनल एग्जाम के बाद रिजल्ट निकलता है ना, कौन पास विदानर हुए, कौन फर्स्ट क्लास निकले, कौन सेकंड ग्रुप के निकले, माला तो बनती है ना। तो फाइनल मालाएं तुम्हारी कब तैयार हो जाएंगी? 18 में पूरी मालाएं ही तैयार हो जाएंगी हैं? हैं? 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो ये 10 साल का टाइम लंबा क्यों दिखाया? क्योंकि एकदम तो नहीं बन जावेंगे ना। नंबर वार ही तो प्रत्यक्ष होंगे। तो 2028 में फाइनल एग्जाम की रूपरेखा और इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। तब का गायन है क्या, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि उस समय में तुम फाइनलिटी में आ जाते हो और फिर तुमको ये नशा रहता है। अभी तो तुमको इतना नशा नहीं रहता है, कितना, जितना फाइनल एग्जाम के बाद तुमको नशा चढ़ेगा। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देखो सभी कहते हैं और ये इतना भी नहीं कहते हैं, अच्छा हम विश्व की रानी और राजा बनेंगे, क्योंकि सीता को टाइटल है रानी का और उनको राजा का, किनको, राम सीता को राजा रानी का टाइटल है और इनको टाइटल है महाराजा महारानी का, तो फर्क हो गया ना। यहां भी कायदा ऐसे होता है, महाराजा महारानी बड़ी, रानी और राजा छोटे, तो ये टाइटल मिलते हैं। महारानी का टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई लेते थे तो उनको लाखों देना पड़ता था। क्या लाखों देना पड़ता था, लाखों रुपया देना पड़ता था। और यहां संगम युग में क्या देते हैं, है लाखों को ज्ञान देते हैं, और जिनको ज्ञान का संदेश देते हैं वो प्रजा तो बन जाती है। जो प्रजा बन जाती है वो फिर अंत में ऊंची स्टेज की प्रजा प्रत्यक्ष हो जाती है। तो देखो बहुत देना पड़ता है, कम से कम कोई को करोड़ दो करोड़ देंगे तब उनको टाइटल मिलता था महाराजा महारानी, क्योंकि बाबा इन सब बातों का अनुभवी है ना। जो राजा रानी का टाइटल लेते थे वो लाख दो लाख पांच लाख जरूर देते थे, और अगर कोई चाहे मुझे कोई दूसरा छोटा मोटा राज बहादुर तो 10-20 हजार देना पड़ता था, क्योंकि ये बाबा का अनुभव है कि किनको किनको ये टाइटल दिलवाए, समझा ना। वो गवर्नमेंट थी कौन सी, अंग्रेज गवर्नमेंट, टाइटल दिलाया था। तो महाराजा महारानी के लिए कोई 10-20 हजार नहीं दिया होगा, छोटी मोटी सौगात दे देते 100-200 रुपए की और वो छोटे मोटे टाइटल मिल जाते। नहीं तो कितनी ज्यादा रकम भर के देनी पड़े, वो तो हद की रकम थी। यहां तो बेहद की बात है, वो भी गवर्नमेंट से अगर कोई माने और पैसा देवे तो क्या नहीं मिल सकता है। 21:63 की वाणी का चौथा पेज, जो कुछ चाहे तो गवर्नमेंट दे देंगे। और इस समय में विश्व का तो कोई है नहीं, हाँ तुम बच्चे बैठे हो। जब कोई दूसरे सत्संग में तो ये बातें होंगी नहीं, तो सत्संग जो पुराने हैं वो तो चले आते हैं द्वापर से। परंपरा का अर्थ ये नहीं है कि सतयुग से चले आते हैं, नहीं, ये सब सत्संग भक्ति मार्ग में शुरू होते हैं। ऐसे तो नहीं है कि भक्ति मार्ग सतयुग से चला आता है। अरे कहते भी हैं ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। ज्ञान से सोजरा हो जाता है, भक्ति अंधियारा था तक ज्ञान को कहा जाता है। तो जरूर आधा कल्प ज्ञान वालों, उन्होंने तो ये भक्ति नहीं की होगी, पिछाड़ी में है भक्ति। तो वहां से लेकर के ये वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह पढ़ते आए हैं, पढ़ते पढ़ते आकर के अब अंत में तमो प्रधान बने हैं। क्यों क्यों तमो प्रधान बने? क्योंकि भक्ति पहले अभिविचारी थी, फिर अभिविचारी भक्ति से विविचारी बननी है जरूर। द्वापर में पहले अभिविचारी भक्ति, पीछे नीचे उतरते उतरते बिल्कुल ही दुर्गति को, तमो प्रधान स्थिति को पाया। देखो भक्तों को अभी भी कितना नशा है, इतना नशा है जो तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनेंगे ही नहीं, बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, ज्ञान से थोड़ा ही भगवान मिलता है। तुम पूछेंगे काय से मिलता है, कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। भक्ति से भगवान आएंगे मिलने के लिए, ज्ञान से थोड़ा ही मिलेगा। तो सचमुच जो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं उससे भगवान नहीं मिलता है। भक्तों को भगवान मिलते हैं क्योंकि उनको साक्षात्कार कर आते हैं। शास्त्र पढ़ने से कभी किसको साक्षात्कार नहीं होगा, परंतु भक्तों को अगर बैठ करके कोई की भी, कृष्ण की या किसी की भी भक्ति, नौदा भक्ति जिसको कहते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति, ऐसी नौदा भक्ति करेंगे तो उनको साक्षात्कार हो जाएगा। तो साक्षात्कार करके वो खुश हो जाते हैं। ये शूटिंग कहां की है? हैं? वहां तो भक्ति में बंद आंखों का साक्षात्कार करके खुश हो जाते हैं, और यहां ज्ञान मार्ग में उनके साक्षात्कार में है अल्पकाल की खुशी, और तुम्हारे साक्षात्कार में है सदा काल की खुशी, क्योंकि तुमको बुद्धि से साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं। वो भी समझते हैं हमको भगवान मिला, बस उनकी खुशी तो इतने तक ही रहती है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। कोई ऐसे नहीं कहेगा कि भगवान मिला तो भक्ति मिली, जीवन मुक्ति मिली, मुक्ति मिली, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान का दीदार हुआ और बहुत अच्छी तरह से खुश हुआ। फिर भी बाबा कहते हैं ना, भक्तों को भक्ति करने से साक्षात्कार हो सकते हैं। तुम कितना भी बैठ करके शास्त्र पढ़ो, तुमको किसका साक्षात्कार होगा? क्या शास्त्रों का साक्षात्कार? देखो अभी तो वो खुद है ना, जो मन की मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे, अल्पकाल की क्षण भंगुर, सोई बाप बैठ करके समझाते हैं। फिर कोई भी देवता बनाओ, भले गुड़ियों को बनाओ, भले पूंछ वाला बनाओ, शीश वाला बनाओ, भगवान को कुत्ते की पूंछ वाला बनावे, मच्छ वाला बनावे, कच्छ बनाए देवे, हाँ उनकी आशा पूर्ण करने के लिए मैं उनको साक्षात्कार जरूर कराता हूं। इसलिए मनुष्य समझ सकते हैं कि मच्छ में भी है, कच्छ में भी है, ठिक्कर में भी है, भित्तर में भी है। इसलिए उन्होंने ये समझ लिया, पर है तो नहीं ना, ये तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए उनका दिल खुश कर देता हूं। अभी तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप तुम्हारी दिल कितना खुश करते हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो, सो भी सच्चे सच्चे बच्चे हो, क्योंकि सच्चे भी हैं, फिर कोई कोई कच्चे भी हैं। सच्चे को कहा जाता है मातेला और कच्चे को कहा जाता है सौतेला। तो मातेला होगा वो प्रतिज्ञा करेंगे और फोटो भेज देंगे और कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहेंगे। कौन? जो पक्का होगा, जो उनसे थोड़ा कच्चा होता है, मातेला भी होता है, तो वो भी कदम कदम पर मत नहीं लेगा, कदम कदम पर मत नहीं लेंगे, बाबा से हर बात कदम कदम पर नहीं पूछेंगे तो वो भी भटकते रहेंगे। कहां भटकते रहेंगे? बाबा से अनिश्चय बुद्धि होकर कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पर भटकते रहेंगे, फिर गिरते रहेंगे, लंगड़ाते रहेंगे। परंतु नहीं, यहां तो सुप्रीम पंडा है। पंडा माने रास्ता दिखाने वाला, ये रूहानी पंडा है। कहां ले जाता है? रूहों के धाम में, परम धाम में ले जाता है। और परम धाम से आने वाला परम धाम से आया है, जो कदम कदम पर तुमको श्रीमत देता है, बोलता है मैं आया हूं, पंडा बन करके आया हूं, तुम बच्चों को कहां ले जाने आया हूं? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम ले जाने आया हूं। फिर अपने मुक्ति धाम निर्वाण धाम ले जाऊंगा ना, क्योंकि मैं रहवासी ही निर्वाण धाम का हूं। मैं आया हूं तुमको निर्वाण धाम चलने के लिए, इसलिए तो कहता हूं कि हे बच्चे, अपने निर्वाण धाम को फिर से याद करो और ये सारी दुनिया उसके लिए भक्ति करती रहती है। जीवन मुक्ति के लिए तो कोई करते ही नहीं है। भक्तों को क्या समझाते हैं गुरु लोग हैं? भक्तों को समझाते हैं कि मुक्ति पाना है, क्योंकि उनको तो कोई मत देने वाला है ही नहीं। जो मत देने वाले हैं गुरु लोग, वो सब मुक्ति चाहते हैं। उनमें कोई देवता तो है नहीं, बाकी तो वो सन्यासी हैं, वो तो मुक्ति वाले हैं। अभी वो कहते हैं कि देखो, मैं ही सबको सदगति और गति देने वाला हूं, तो सदगति तो थोड़ों को मिलेगी ना, क्योंकि सदगति का इम्तिहान बड़ा भारी है। सदगति है जीवन मुक्ति, और वो है सन्यासियों की क्या है? सिर्फ मुक्ति। मुक्ति तो कम होगी ना, क्योंकि जो मुक्ति लेंगे वो स्वर्ग नहीं देख सकेंगे। तो कितने मुक्ति लेंगे जो इन आंखों से स्वर्ग को देख सकेंगे? जो पहला ग्रुप है पक्के सूर्यवंशियों का, वो ही स्वर्ग को देख सकेंगे इन आंखों से। बाकी तो इन आंखों से स्वर्ग नहीं देख सकेंगे। या तो जो उन 4.5 लाख में प्रवेश करने वाले हैं, वो भी आंखों से ही स्वर्ग देखेंगे। बाकी जो भी धर्म पीछे आते हैं सिवाय सूर्यवंशी चंद्रवंशी के, वो कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो कौन सा स्वर्ग हुआ? स्व माने स्वयं स्थिति, ग माने गए, अर्थात जो 16 कला संपूर्ण स्व स्थिति में जाते हैं वो ही स्वर्गवासी हैं पक्के। बाकी सब हैं पक्के स्वर्गवासी या कच्चे स्वर्गवासी? क्यों? क्योंकि जो कच्चे स्वर्गवासी होते हैं, बाद में आने वाली आत्माएं होती हैं, वो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्वर्ग के सुख वो देख नहीं सकते। ये वंडरफुल बैकुंठ ही वो तो नहीं देख सकते। कौन सा वंडरफुल बैकुंठ? कौन से युग का? उनमें नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहां तो पूरा लायक बनना पड़े। जो लायक थे सूर्यवंशी थे, उनको माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया। 21:10-63 की वाणी का 5वां पेज। तो नालायक को फिर लायक बनावे तब तो सूर्यवंशी बने ना, और नालायक किसको कहा जाता है? सही, नालायक कहा जाता है बंदरों को, जिनमें 10 सिर 5 शीश ان کو تو بندر کہنا یعنی بندر سے بھی بدتر. تو آج منشیہ بندر سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. تو ابھی ہر ایک اپن سے پوچھے کہ میں لکشمی اتوا نارائن کو بننے لائق بنا ہوں یا بنی ہوں, کیونکہ نشہ تو سب کو چڑھتا ہے نا. کہتے ہیں ہم نارائن کو بریں گے با لکشمی کو بریں گے. ابھی اپنی اپنی شکل اپنے ہی درپن میں دیکھو. اس کو کہا جاتا ہے اندر کا درپن. کیا گیت گاتے ہیں, تیرا من درپن کہلاوے. یہ والا درپن ارتھات آئینہ, وہ آئینہ نہیں. برابر جانتے ہو کہ لکشمی نارائن کو بھرے گی, یہ تو پکا جانتے ہو. ابھی ہر ایک بچے پوچھتے ہیں, ایک تو نہیں پوچھتے. بابا ہم بھی پوچھتے ہیں, ہماری اوستھا آپ سمجھتے ہو ایسی ہے, جب نارائن کو بھرنا ہے تو بابا بولتے ہیں تم اپنے درپن میں منہ کو دیکھو. یہ کام کرودھ لوبھ اشدھ اہنکار, ان پر تم نے کہاں تک بھی جیت پائی ہے. اور بھی باقی کون بھوت ہیں تمہارے میں؟ تو کہیں گے ہاں بابا مجھے کرودھ آتا ہے. پھر تم اپنے کو لکشمی یا نارائن کو ورنے کے لائق سمجھتے ہو؟ یہ اپنے دل سے پوچھو, اس میں کیا بات ہے. تم کو یہ ساتھ چھوڑنا پڑے گا. اب اس میں پوچھنے کی تو کوئی بات ہی ہے نہیں ہے. تم کیا بابا سے پوچھیں گے, اپنے دل سے پوچھو. باپ سمجھائے دیتے ہیں اپنے درپن میں پوچھو کہ تمہارے میں کام کا بھوت ہے. بھلے اس سمے تم کچے ہو, یہ تو بیٹھ کر کے کوئی پچھاڑی میں پوچھا ہے نا, تب ہی ہم بھر سکیں گے. تو دیکھو بابا کہاں کی بیٹھ کر کے, اور یہاں تو بابا خود پوچھتے رہتے ہیں. میرے لاڑلے بچے ہاتھ تو اٹھاتے ہو کہ ہم شری نارائن کو بھریں گے, بولتے ہو نہیں نہیں ہم رام چندر کو نہیں بھریں گے. ہم مایا سے ہاریں گے تھوڑے ہی, یا ہم ناپاس تھوڑے ہی ہوں گے, 33 مارک سے کم تھوڑے ہی جائیں گے. ایسے نالائق بچے ہم تھوڑے ہی ہیں, کیونکہ جو فیل ہوئے تو نالائق بچے ہوئے نا. جو باپ کو کہے کہ بابا ہم تو 33 مارک تک بھی پاس نہیں ہو سکتے, تو بابا بولیں گے تم تو بڑے نالائق ہو. اگیان کال میں کوئی اسکول یا بچہ ہو, باپ پوچھے ارے پاس ہوں گے؟ نہیں بابا ہم تو 33 مارک سے بھی نیچے چلا جاؤں گا. تو پھر پاس ہو سکیں گے؟ کہیں گے یہ تو کچا بچہ ہے. کہیں گے تم تو مورکھ ہو, بڑے نالائق. تو یہ بے حد کا باپ بھی بچوں سے پوچھتے ہیں. بچے तुम पुरुषार्थ करते हो। देखो तुम नारायण को वरने के लिए कहते हो तो अपने दिल से पूछो, अंदर कोई विकार है, काम है, क्रोध है, भले अगर है भी तो मुटाते चलो। कोई भी ऐसा काम करेंगे या कोई के ऊपर क्रोध करेंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित माना ईश्वर को भी कलंक लगाएंगे, ईश्वर को भी कलंक लगावेंगे तो उनके कुल को भी कलंक लगावेंगे, और अगर कुल को कलंक लगाएंगे तो फिर तुम्हारा रजिस्टर ही खराब हो जाएगा और तुमको फिर बड़ा घाटा पड़ जाएगा। तो बिल्कुल ही खबरदारी चाहिए। काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, ये सभी मिटाना होता है। मंजिल बहुत ऊंची है। आए हैं पढ़ने के लिए हम, श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बच्चे बाप और मां को फॉलो करो और बहुत मीठे बनो। देखो कितना मीठा कितना प्यारा शिव बाबा कहते हो ना, तो बाप कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, दिल दर्पण में देखो, तुम इतने मीठे हो, इतने प्यारे हो, तुमको सबको ये ऐसा प्यार करते हैं जैसे मम्मा बाबा को प्यार करते हैं, वैसे तुम्हारे में से कोई ऐसे बने जो उनको प्यार करते हैं, बरोबर ऐसे हैं जिनको बहुत प्यार करते हैं। किसको? जो आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, जैसे बाबा नाम भी लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, कुमार का है तो बड़े धनवान के घर में किले में बैठी हुई है, वहां बड़े धनवान आते हैं, बड़े बड़े सन्यासी कांग्रेस वाले आते हैं, उनके बैठ कर को तो समझाते हैं ना। फिर देखो कानपुर में अच्छी अच्छी गंगे है, मोमले बच्चे है, तो नाम तो लेंगे ना। जिसे कहा जाता है ये पांडव सेना में कौन कौन महारथी है, कौरव सेना में कौन कौन महारथी है, बताऊं तुम बच्चों को? कौरव सेना में कहेंगे ओ हो, प्रेसिडेंट राधा कृष्णन, क्या कहा, कौन सी सेना के हुए राधा कृष्णन, कौन से राधा कृष्णन और कौन सी कुमार का, हद की कुमार का राधा कृष्णन या बेहद की कुमार का राधा कृष्णन है? अरे जैसे कहते हैं गांधी हद का और गांधी बेहद का, तो तुमको बताते कौन है, कौन कौन बड़े बड़े हैं। फिर देखो नेहरू जी कितना बड़ा है, फिर देखो ये चीफ मिनिस्टर्स, ये फलाना, कौरव सेना के एक एक राजधानी का چیف منسٹر فلانا فلانا ہے نا، تو ایسے کیوں بنے؟ کیونکہ انہوں نے کانگریس کو مدد دی تھی، باپو جی کو مدد دی تھی، جو بیچارے چاہتے تھے کہ ہم رام راجی استھاپن کریں گے، وہ چاہتا تھا، پرنتو وہ تو رام راجی استھاپن نہیں کر سکے۔ کون؟ باپو جی۔ کون سا باپو جی؟ حد کا یا بے حد کا؟ حد کا باپو جی بھی رام راجی استھاپن نہیں کر سکے، اور بے حد کا باپو جی بھی رام راجی نہیں استھاپن کر سکے۔ تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیا، تو کورو راجی استھاپن کر دیا۔ کیا باپو نے کیا کر دیا؟ کورو راجی استھاپن کر دیا۔ حد کی دنیا والے باپو نے بھی کورو راجی استھاپن کیا، اور بےحد کے باپو نے بھی کورو راجی استھاپن کر دیا۔ کورو مانے کیا؟ پاؤں کی طرح ایڈورٹائزمنٹ بہت کرتے رہتے ہیں، کاؤں کاؤں کاؤں، شور گل بہت کرتے ہیں، پرنتو اور ہی بھرشٹاچار بڑھتا جاتا ہے کہ کم ہوتا جاتا ہے؟ اور ہی بھرشٹاچار بڑھتا جاتا ہے۔ جو نہ تھا یہ ڈراما میں وہ ہونے کا تھا، تو جنہوں نے مدد دی دیکھو ہیں نا ان کے اوپر، اچھے اچھے عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ اچھا یہاں بھی دیکھو، پانڈو سینا میں کون کون مہارتھی ہے؟ بتایا نا، کون کون بتائے؟ مما ہے، بابا ہے، یہاں مما بابا کا نام لیا، پھر یہ منوہر بیٹی ہے، یہ بہت اچھا سنبھالتی ہے، ابھی دیکھو یہ ہماری دیدی آئی ہوئی ہے، کون؟ دیدی کے نام سے کون پرسدھ تھی؟ منموہنی دیدی۔ یہ اچھا ہے نا، کتنے سینٹرز کو سنبھالی بیٹھی ہے۔ یہاں دیکھو ہماری رتن ہے، یہ دیکھو دیوتا ہے، میرٹھ کا وہ مہارتھی دیکھا ہوا ہے نا، ایسے ایسے ابھی کتنے نام بتائیں، ہیں تو صحیح نا۔ ابھی بات یہاں کی ہے نا، پھر بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ تو دیکھو یہاں کی بات ہے، اور گیتا میں کیا لکھا ہے، بھاگوت میں کیا لکھا ہے، سبھی ان کی شاخائیں بنائی ہوئی ہیں۔ رامائن دیکھو کوئی دھرم شاستر نہیں ہے، اور مہابھارت اس کا ہی دھرم شاستر بنایا ہے، اس میں بھی گپوڑے لگائے دیے ہیں، بھاگوت بھی اس کا ہی بنایا ہوا ہے، اتھا ये पास भाग भी है तो यहाँ का ही बनाया हुआ है, नहीं तो ये पास भाग कहाँ से आया? रामचंद्र के पास तो था ही नहीं। इस दुनिया में रामचंद्र कोई अज्ञानी थोड़े ही था, वो तो अभी प्रारब्ध भोग रहे हैं, उनको ज्ञान की क्या दरकार है? तो वशिष्ठ भी फालतू, बाप आकर बताते हैं ना, कहा है ना मैं तुमको सभी वेद ग्रंथों और शास्त्रों का सार बताता हूं। बाबा कहते हैं ये भी बहुत पढ़ता था, इन लोगों के भी डब्बे में ठीक करी थी और ये भी ठीक कर था। अभी देखो ठीकर से ठाकुर बन रहा है, तुम भी ऐसे बन रहे हो ठीकर से ठाकुर, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि अर्थात पारसनाश बन रहे हो। हम श्री रामचंद्र और सीता को पारसनाथ नहीं कहेंगे, क्यों है? रामचंद्र को और सीता को पारसनाथ क्यों नहीं कहेंगे है? क्योंकि उनके लिए नहीं बोला है, जो देखे जो सुने उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। तो आंखों से देखेगा माने आंखों से स्पर्श हुआ ना, तो पारसनाथ का गायन हुआ। कानों से सुना तो कानों से आवाज का स्पर्श हुआ ना, तो पारसनाथ उस समय की बात है, फेलियर की बात नहीं है। कहते हैं चांदी का अलाय पड़ जाता है, उनको कहा जाता है सिल्वर का एज, और तुम तो गोल्डन एज वाले बन रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे अपने दिल रूपी दर्पण में पूछते रहना कि हम अभी बरोबर अशरीरी हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, हमको बीच बीच में देह का अभिमान तो नहीं आ जाता है? देह के अभिमानी हो या देही अभिमानी हो, अपन को अशरीरी समझ करके उठते बैठते, क्योंकि उठना फिरना तो फिर शरीर के साथ होगा ना, परंतु निश्चय तो हो, ऐसे तो नहीं है हमको कोई आत्मा को रियलाइज करना है, नहीं परमात्मा को रियलाइज करना है, भगवान को जानना है। अरे आत्मा तो सदैव चाहती है कि मैं बाप को जानूं, ऐसे कहा जाता है। तो आत्मा को ज्ञान चाहिए, ज्ञान किसकी? बाप की नॉलेज चाहिए, है तो सिर्फ हर एक आत्मा, अहम आत्मा मम शरीर, सो तो सब हम आत्मा ही हैं। अभी उनको भगवान से मिलना है और भगवान से मिलकर के रियलाइज करना है कि हम आत्मा परमपिता परमात्मा से मिले, तो भगवान आकर के बच्चों को रियलाइज करेगा, नहीं तो कैसा भगवान? अगर भगवान प्रैक्टिकल में ना आवे, शरीर में ना आवे, तो रियलाइज कैसे कराएगा? फिर वो कैसा भगवान है, कौन मानेगा? बाप आए तब बच्चों को आकर के जन्म दे, मुखवंशावली बनावे, मुखवंशावली बनावे, फिर उनको अपना परिचय देवे। देखो तुम मुखवंशावली बने हो, वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुखवंशावली नहीं है। कहते हैं हम ब्रह्मा मुखवंशावली हैं, परंतु उनका ब्रह्मा कहाँ है? तो क्या कहेंगे, सूक्ष्म वतन में तुम यहां कहां से आ गए? तो सच्चे सच्चे मुखवंशावली तुम बने हो, तुमको सब परिचय देते हैं, पाप तुमको सारा राज समझाते रहते हैं। ओम शांति।